मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پروگرام میری ذمہ داری مائی ریسپانسبلٹی اس کے ساتھ ایک بار پھر حاضری ہے. آج انشاءاللہ عزوجل ایک طالب علم ایک اسٹوڈنٹ کی کیا ذمہ داری ہے, بطور طالب علم میری کیا ذمہ داری ہے, انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے کچھ بات چیت ہوگی. آپ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, استاد جو ہے وہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل ہمارے جو میری ذمہ داری کی پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں کلام ہوا. استاد جو ہے وہ اگر اچھے انداز سے اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو یقیناً اس کی ذمہ داری جب اچھے انداز سے وہ ادا کرے گا تو اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ لے سکتا ہے. لیکن اگر اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو استاد کی یہ جو محنت ہے, جو اس کی کوشش ہے, اس کی جو قابلیت ہے, وہ پھر یعنی اس طرح اسٹوڈنٹ کے کام نہیں آئے گی. جیسے آپ کسی برتن میں کچھ ڈالنا چاہیں, چاہے کتنا ہی اچھا مشروب کیوں نہ ہو, اگر وہ برتن جو ہے وہ اس کے پیندے میں سوراخ ہے یا کہیں سے وہ لیک ہے تو اب وہ چیز وہ مشروب اس میں ٹھہرے گا نہیں, کتنا ہی اچھا جوس ہے وہ اس میں ٹھہرے گا نہیں, نکل جائے گا. تو جو برتن ہے اس کا بھی یعنی کیپیبل ہونا ضروری ہے اور وہ اس کو ایبزارو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پہلے بھی یہ مثال دی جا چکی ہے کہ بارش برستی ہے تو اگر چٹان پر برستی ہے, پتھر پر برستی ہے تو وہ یعنی بہہ جاتا ہے پانی, لیکن اگر زرخیز زمین پر بارش برستی ہے, زمین مٹی سینڈ اس کو ایبزارو کرتی ہے اس پانی کو, تو پھر وہاں سرسبز جو ہے وہ گھاس اگتی ہے, دیگر نباتات دیگر جو پودے ہیں یہ اگتے ہیں, ہری بھری فصلیں اگتی ہیں, ایسی فصلیں اگتی ہیں کہ جو انسانوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں, بڑی قیمتی فصلیں اگتی ہیں. تو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوگی تو تبھی بارش بھی مفید ہوگی. اگر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو بارش پتھر پر برس رہی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے. ایسے ہی جو اسٹوڈنٹ ہے, جو طالب علم ہے, اب اس کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے پوری کرے تاکہ وہ استاد کے اسباق جو وہ بھرپور تیاری کر کے اور ایک اچھے انداز سے ڈیلیور کر رہا ہے اس کو لے سکے, اس سے لرن کر سکے, اس کو آبزارو کر سکے. طالب علم جو ہے یہ جو ایج ہوتی ہے 12, 13, 14 سال, 15 سال, کچھ شعور کی عمر ہوتی ہے, کچھ سمجھنے کی عمر ہوتی ہے یہاں بھی, اور اس کے بعد یعنی اس سے بڑے ہو جائیں 18 سال, 20 سال, 22 سال, تو اس عمر میں بھی بعض اوقات میچورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ ایک پرائم ٹائم ہے, پرائم ایج ہے, بہترین دور ہے زندگی کا, جب آپ کے اعصاب یہ جوان ہیں, آپ کے بدن میں طاقت ہے, آپ تھکتے نہیں ہیں, دماغ بھی جو ہے وہ اس میں صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ سکے, میموری جو ہے وہ تیز ہے. آج اگر ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں, میری ایج جو ہے وہ 45+ ہے, تو اگر ہم غور کرتے ہیں اب تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کے مطالعہ کے بعد بھی, کئی بار سٹڈی کرنے کے بعد بھی, یعنی ایک چیز کو ہم کئی بار پڑھتے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ ذہن نشین نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اور یہی عمر جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا, 13-14 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, 17 سال کی عمر میں, کسی بیان میں کوئی ایک جو بات سنی ہے اس وقت, पड़ी भी नहीं है, लेकिन वो बातें अब भी थोड़ा सा गौर करें तो याद हैं, याद रहती हैं। उस वक्त एक बार कोई चीज़ पढ़ ली या दो बार पढ़ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात अभी भी याद है, लेकिन आज कई बार सुनने के बाद भी, कई बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें ज़हन नशीन नहीं होती। तो वो जो एज है मेरे वो नाज़रीन मदनी चैनल के, बिलखुसूस जो इस एज में हैं, वो अगर गौर करें तो ये जो एज है ना, ये प्राइम टाइम है। आपके जिस्म में भी ताकत है, आप जवान हैं और आप जो है आपका जहन भी नौखेज है। अब आप जितना हासिल कर सकते हैं आपको हासिल कर लेना चाहिए। ये उस उम्र में बाज़ औक़ात बात समझ नहीं आ रही होती। अब स्कूल जाने वाले हों या मदरसे जाने वाले हों या जामिया जाने वाले हों, दुनियावी उलूम सीखने वाले हों, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या मदरसतुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहे हैं, तजवीद का इल्म हासिल कर रहे हैं, या दरसे निज़ामी कर रहे हैं, तो इस उम्र में बाज़ औक़ात ये बातें इतनी समझ नहीं आ रही होती कि ये प्राइम एज है, ये कह रहे हैं बड़ा अहम उम्र का हिस्सा है, तो वो सोच रहे होते हैं कि किस किस मुसीबत में हमें डाला हुआ है। सारे जो हैं वो ईजी ईजी हैं और हम सुबह सवेरे, चाहे सर्दी है या गर्मी है, जैसा भी मौसम है, दीगर मामलात हैं, फंक्शन है, इधर उधर छुट्टियाँ, कुछ भी नहीं, रोज़ाना बस स्कूल जाना है, रोज़ाना कॉलेज जाना है, रोज़ाना मदरसे या जामिया जाना है। तो इस उम्र में बाज़ औक़ात ये बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन हकीकत ये है कि जो वो एज है, यानी ये तकरीबन एक सन शऊर में जब बंदा दाखिल होता है 12-13 साल से लेकर 22-25 साल की उम्र, ये एक प्राइम एज है जिसमें आप जितना इस उम्र में सीखेंगे ना, उसके बाद वो आपकी एबिलिटी भी नहीं रहेगी। एक तो ये है कि जहन उस तरह साथ नहीं देता, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उस वक्त एक बार कोई बात सुन ली आज भी याद है, एक बार पढ़ ली आज भी याद है, एक दो बार पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन नशीन हो जाती थी, आज कई बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें याद नहीं रहती, ज़हन नशीन नहीं होती। इसके अलावा और ये भी होता है कि थोड़ी सी मुशक्क़त ज़्यादा करते हैं तो तबीयत भी आजमाइश में आ जाती है। अब मामूली नज़ला ज़ुकाम हो जाए, मामूली फ्लू हो जाए, मौसम की तब्दीली में या किसी वजह से एलर्जी होती है तो नज़ला शुरू हो जाता है, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, हल्का फीवर यानी बुखार हो जाता है, टम्परेचर हो जाता है, तो इस वजह से अब इतनी नकाहत हो जाती है, इतनी कमज़ोरी हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा मेंटल यानी जहनी कोई काम करते हैं तो बंदा जल्दी थक जाता है इस एज में, लेकिन उस उम्र में ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह एक हिम्मत थी और बाज़ औक़ात ये होता था कि जाग रहे हैं, एक यानी लॉन्ग ड्यूरेशन है जाग रहे हैं, कई घंटों से जाग रहे हैं, सोए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहन तरोताज़ा है। अब वैसा नहीं है, उस वक्त मुशक्क़त बर्दाश्त कर लेते थे, अब बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये भी चीज़ें हैं ना, जहन जो है वो भी यानी इंटेलिजेंट बंदा उस एज में होता है और इस उम्र में आके मेंटली वो वीक हो जाता है, ये भी है, साथ साथ ये तबीयत और ये आजमाइशें भी हैं। फिर उस वक्त जहन इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होता, मेंटली बंदा इतना ज़्यादा इंगेज नहीं होता, उसका मेन काम ही पढ़ना होता है। अब अगर वो साथ यानी इस एज में आकर खानगी मसाइल हैं, घर के बच्चों की तालीम का मामला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई बढ़ रही है, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, फ़लाँ से लेना है, फ़लाँ को देना है, कारोबार के मामला, जॉब के मामला, फिर रिश्तेदारों के मामला, तो बहुत कुछ वो इंसान के जहन में चल रहा होता है, तो उसकी एबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी होती है, मुतासर मुसलसल हो रही होती है। एक सिंपल सी मिसाल है, तलबा तो इसको बासानी समझ सकते हैं कि एक फ़्रेश मेमोरी होती है ना, आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप टैबलेट यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जिसकी मेमोरी बिल्कुल फ़्रेश हो, आप देखते हैं कि उसमें कोई भी चीज़ आप सेव करें तो उसमें बासानी सेव भी होती है, आप उसको चलाएँ प्ले करें तो बड़े अच्छे अंदाज से प्ले होती है, लेकिन जब उसकी मेमोरी फिल हो जाती है तो अब वो हैंग होना शुरू हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी वो मुतासिर होती है। तो ऐसे ही इस एज में जो ये स्टूडेंट्स की एज होती है, वैसे तो खैर तालिब इल्मी के लिए कोई हद नहीं है कि एज लिमिट क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़्ज़ोजल दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से बड़ी उम्र के भी कई इस्लामी भी ऐसे हैं जो उलूम सीखते हैं, दीनी इल्म सीखते हैं, और दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कई बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो मास्टर कर रहे होते हैं, वो उसके बाद एमफिल की तरफ जा रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं। तो कोई एज तो ख़ास नहीं है यानी इसके लिए तालिब इल्मी के लिए और इल्म सीखने के लिए, लेकिन जो प्राइम एज है वो यही, यानी जो एक तो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है वो भी इल्म दीन सीखने का सिलसिला उस वक्त होता है या दुनियावी उलूम सीखने का सिलसिला होता है, लेकिन वो उसकी एज और मेंटल लेवल के मुताबिक होगा। बिलखसूस 10-12 साल से लेके 25-27 साल तक की एज, ये प्राइम एज है, इसमें आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीख लें। अब इसमें जो मेरी जिम्मेदारी बनती है क्या है, अगर आप इस एज में हैं या इस एज के अलावा, सभी के लिए इल्म दीन तो सीखने का सिलसिला जारी रखना ही है। तो जो चीज़ें रुकावट बनती हैं इसमें और वक्त ज़ाया करने वाले उमूर हैं, इनकी तरफ तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। एक तलबा की तादाद ऐसी होती है जो गैर ज़रूरी के मशागिल होते हैं उसमें अपने आप को इंगेज कर लेते हैं, जैसे अपना कीमती वक्त है वो दोस्तियों में, स्कूल में ही, कॉलेज में ही, या मदरसे में, जामिया में, वहाँ किसी के साथ जो है वो एक दोस्ती का ऐसा ताल्लुक बना कि ज़ाहिर है जहाँ रहते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ वो एक मेल मिलाप तो होगा, दोस्ती होगी, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। आप इतना वक्त उस दोस्ती के लिए निकालें कि आपकी दीगर मसरूफियात मुतासिर ना हो, एक हद के अंदर जो है अखलाकियात के दायरे में रहते हुए वक्त ज़ाया ना हो। तो अगर ऐसी दोस्ती है कि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, आपस में उठना बैठना है, इधर उधर घूमना फिरना है, खाने पीने में, और इस तरह वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो आपकी सलाहियतें भी मंद पड़ेंगी और साथ साथ आपकी ये जो प्राइम एज है ये एक ऐसे काम में सर्फ हो रही है, जब ये वक्त गुजर जाएगा ना फिर शायद आपको इसका एहसास होगा, अभी आपके पास वक्त है। तो एक बाज़ूकात ये रुकावट बनती है ज़ाती दोस्ती। आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी जो है उसने तरक्की की है और बिल्कुल सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तलबा जो है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो इंटरनेट वगैरह का जो पॉजिटिव यूज़ है वो बहुत कुछ गेन करने का ज़रिया भी बनता है, इससे बंदा बहुत कुछ सीखता भी है, लेकिन बहसियत मजमू देखें तो इसका नेगेटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है। और एक तादाद तलबा की भी ऐसी होती है कि जो मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल में पढ़कर अपनी सलाहियतों को भी ज़ाया करती है और अपने वक्त को भी ज़ाया करती है। वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें वक्त ज़ाया होता है, सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, चैटिंग चल रही होती है, पोस्टिंग का सिलसिला होता है, पोस्टों को शेयर करने का सिलसिला होता है, वैसे ही देख रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाया, हमारे औकात में बरकत हो, बड़े हों या छोटे हों, बहुत ज़्यादा वक्त इस पर वो ज़ाया इस अंदाज में होता है कि बाद वक्त कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, वैसे ही वो एक होता है कि मैं देखूं क्या हुआ है, मैंने कुछ कोई पोस्ट की थी उस पर कितने लाइक्स आ गए हैं, किसी ने शेयर किया है, बाद वक्त किसी की पोस्ट पर हमने लाइक किया था तो किसी और ने भी उसको लाइक किया, तो ऐसे ही है, उसमें कोई खास दिलचस्पी भी नहीं होती लेकिन बंदा बार बार उसको देख रहा होता है। तो सोशल मीडिया पर और मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा होता है। तो इन मामलात में इसके अलावा बहुत सारी वक्त ज़ाया करने की बहुत सारी मिसालें हैं, ज़ाती दोस्ती, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है, फिर ऐसा मुताला जो यानी किसी हवाले से भी फ्रूटफुल नहीं है उससे भी अवॉइड करना है। बाज़ औक़ात कहानियाँ, अफसाने, नावल, डाइजेस्ट, इस तरह के अगर मजामीन और इस तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें जहन को भी आलूदा करती हैं, ख्यालात भी मुंतशिर होते हैं और साथ साथ जो है वो वक्त भी ज़ाया हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि यानी पत्थर तो हम हैं नहीं, अशिया जैसे होती हैं, ऐसे तो है नहीं, अगर कुछ पढ़ेंगे कुछ देखेंगे तो उसका असर दिमाग पर होगा, दिल पर होगा। अगर आपने कोई ऐसा इश्किया फिस्किया कोई मजमून पढ़ लिया है, कोई रोमानवी दास्तान पढ़ लिया है, कोई हिकायत पढ़ लिया है, तो उसके असरात दिलो दिमाग पर न सिर्फ होते हैं बल्कि बाद अवकात तो कई सालों तक वो चीज़ जहन में रहती है। अब जब आपका जहन इस तरफ इंगेज होगा तो यहाँ जो पॉजिटिव आपकी एक्टिविटी है और आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके निसाबी मामलात हैं, वो मुतासर हो जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। तो इसमें ये तो वो चंद उमूर मैंने अर्ज़ किए कि जिसमें वक्त भी ज़ाया होता है, सलाहियतें भी ज़ाया होती हैं, जहन भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, पढ़ाई की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो कम हो जाती है, और ये दीनी तलबा भी मुतासर होते हैं, दुनियावी उलूम पढ़ने वाले भी मुतासर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदारिस और जामियात जैसे दावत इस्लामी के मदारिस हैं, मदारिसुल मदीना हैं, जामियातुल मदीना हैं, जहाँ दरस निज़ामी करवाया जाता है, दीनी तालीम के ये इदारे हैं दावत इस्लामी के, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकीज़ा ऐसा माहौल होता है और सातेज़ा भी जहन दे रहे होते हैं, फिर दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक बल्कि काफ़ी हद तक तलबा जो है इन खुराफात से बच जाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं दुनियावी तालीम के इदारों को तो वहाँ इसका इब्तिला बहुत ज़्यादा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आफियत का मामला फरमाए, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रहती हैं कि कॉलेज के तलबा और यूनिवर्सिटी के तलबा, उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ के तलबा जो हैं वो नेगेटिव एक्टिविटी में किस तरह वो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ तक के ड्रग्स वगैरह का यूज़ करना, नशा और अशिया का इस्तेमाल करना, ये वहाँ उन इदारों के बारे में रिपोर्ट्स आती हैं। तो जो दुनियावी तालीम के इदारे हैं वहां भी ये इस तरह की चीजें जो हैं, जब यानी चाहे कितने ही जहीन क्यों ना हो और उनका बैकग्राउंड बड़े आला घरानों से हैं, तालीम याफ्ता घरानों से हैं, एजुकेटेड घरानों से हैं, लेकिन अगर इस तरह की एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पैसे का भी ज़ाया हो रहा होता है, सलाहियतें भी ज़ाया हो रही होती हैं, और बाज़ औक़ात एक ऐसा फ़र्द जो आगे चल के कौम मिल्लत के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता था, ऐसे उसमें स्किल्स थे, उसके स्किल्स जो हैं इन नेगेटिव एक्टिविटीज़ की वजह से न सिर्फ ज़ाया होते हैं बल्कि जो उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, एक इन्वेस्टमेंट तो पैसे की सूरत में है, माँ बाप का पैसा है, कौम का पैसा है, वो उसके साथ साथ जो एक वक्त है जो उस पर उस्ताद माहिर असातिज़ा जो उस पर मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत ज़ाया हो रही है, तो बहैसियत मजमू जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है। और फिर ये अगर किसी सूरत आगे बढ़ भी गया तो इसके स्किल्स नहीं होंगे जो इसके होने चाहिए थे, तो मजमू तौर पर देखें कि मुआशरे का, अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का, अपने अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करने का ये जरिया हो सकता है। तो सबसे पहली और अहम बात यह है तालिब इल्म की हैसियत से अगर मैं देखूं कि मेरी मुकम्मल तवज्जो अपने काज की तरफ रहे, अपनी तालीम की तरफ रहे। हाँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटीज़ जो मुआविन होती हैं तालीम के लिए वो साथ ज़रूर होनी चाहिए। आप ऐसा मुतालआ करें जो आपके अमल में, आपके अखलाक में, आपके किरदार में वो इजाफे का ज़रिया हो। आप तसव्वुफ़ की किताबों का मुतालआ कर सकते हैं, आप कुरान पाक जो है वो सीखें, तजवीद के साथ सीखें, कुरान पाक का तर्जमा अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाया किया मारिफतुल कुरान, वो पढ़ें, आप तफसीर सीरातुल जिनान ये पढ़ें, इसके अलावा और जो फ़राइज़ उलूम हैं वो साथ साथ सीखते रहें, तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुआविन होंगी अखलाक और किरदार के बनने में, शर्म हया के डिवेलप होने में मुआविन होंगी। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके आपकी तालीम में मुआविन हों आप वो ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी डायरेक्शन ही जो है वो आपको डी ट्रैक कर दें, आपकी डायरेक्शन से ही आपको मोड़ दें, आपके जहन को परागंदा कर दें, आपके ख्यालात को मुंतशिर कर दें, तो हरगिज़ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को न डालें। अच्छा, अब दोस्ती में भी, यानी ऐसी दोस्ती जो तालीम और उसमें रुकावट बन रही हो, बहुत ज़्यादा इंगेज रहना वो तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो बड़ी उम्र के तलबा हैं वो अपने हम उम्र तलबा के साथ वक्त गुजारें और एक्स्ट्रा इस तरह गैर अखलाकी मामलात वगैरह से बचते रहें तो बहुत अच्छा है। अपने से कम उम्र तलबा के साथ वो इंगेज ना हो कि ये इसमें काफ़ी खतरात हैं, इसी तरह कम उम्र के तलबा को भी चाहिए कि वो किसी बड़ी उम्र के तालिबे इल्म के साथ दोस्ती और उसके साथ उठना बैठना न रखें। ऐसे इदारे जहाँ रिहाइश होती है, जैसे दावत इस्लामी के जामियात हैं, जामियातुल मदीना, यहाँ रिहाइश का भी सिलसिला होता है। अब यहाँ और कुछ ऐसी एहतियातें हैं जो करनी चाहिए। वैसे तो रिहायशी इदारों में, जो तलबा रिहायशी इदारों में रहते हैं, इनको हुसूल इल्म दीन के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। दुनियावी तौर पर भी हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, इनको के पास वक्त ज़्यादा होता है कि ये ज़्यादा सीख सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जो वहाँ माहौल होता है, जो रूममेट होते हैं जिनके साथ पास रह रहे हैं, जो जिनके साथ रह रहे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके साथ फिर बाज़ औक़ात इस तरह का वो ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से ऐसी कैफियत बन जाती है कि वक्त यहाँ ज़ाया होता है, तो ऐसा अंदाज भी नहीं होना चाहिए। इसमें एक और अहम बात जो बहुत ज़रूरी है, आपकी तवज्जो, फोकस आपका ये हुसूल इल्म दीन की तरफ रहे, या जो भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं जायज़ तालीम उसकी तरफ आपका फोकस रहे। तो इसमें बाज़ औक़ात जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, कोई मुआशी हालात की तंगी का शिकार होता है, तो फिर ज़हन बनता है कि मैं साथ कोई जॉब कर लूँ, कोई काम कर लूँ। तो इसमें ये मशवरा है कि आप ज़माना तालिबे इल्मी में किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी की तरफ हत्तर इम्कान ना जाए, क्योंकि इससे आपका जहन बहुत ज़्यादा मुंतशिर होगा। अगर बिलफर्ज़ कोई ऐसी सूरत है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी से रेलिवेंट, उसी से मुतालिक जॉब हो सकता है वही आपको मिल रही हो, या आप उसी उसका एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हो, तो बाज़ औक़ात ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है, तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो उसको अवेल किया जा सकता है जबकि तालीम में हरज ना होता हो। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ, एक तालिब इल्म है जो तजवीद का इल्म सीख रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ या नाजरा के वो यानी सीख रहे हैं, उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है, मंजिल याद कर रहे हैं। अब इनको कहीं ऐसी जगह पे पढ़ाने का मौका मिलता है जहाँ कुरान पाक ही पढ़ाना है, तजवीद ही पढ़ानी है, तो अगर वो वाकई अहल हैं तो वो अगर वहाँ पढ़ाएंगे तो इनके स्किल्स मज़ीद डिवेलप होंगे। माशाल्लाह, इल्म ऐसी दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है, तो यहाँ अगर सिखाएंगे तो इनका अपना इल्म भी मजबूत होगा। इसी तरह जामतुल मदीना में अगर कोई हमारे तालिब इल्म है और उनको साथ जो है वो कहीं इस तरह पढ़ाने का मौका मिलता है, जबकि वो अहल भी हों, अगर वो पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल ये पढ़ाना उनके लिए जो है वो उनकी तालीम का जो सिलसिला इसको इसके लिए मुआविन बनेगा। कहीं रेलिवेंट है, इमामत वगैरह का सिलसिला करते हैं तो वहाँ इंशाअल्लाह जो यहाँ सीख रहे हैं प्रैक्टिकली उसके इम्प्लीमेंटेशन का निफाज का मौका मिलेगा। फिर आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे दुनियावी इदारे में पढ़ रहे हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, या दीनी इदारे में आप तालिब इल्म हैं, तो सब के लिए मेरा मशवरा है कि आप सब दावत इस्लामी के दीनी कामों को प्रैक्टिकली इख्तियार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल जिस दौर में हमें दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला, हमने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में दीनी कामों में जब शिरकत की, तो उस वक्त हम भी स्कूल वगैरह में इन स्कूल में पढ़ते थे, तो उस दौर में जो एक वो जोश वलवला जज्बा वो जो एक कैफियात थी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ोजल उस दौर में जो बरकतें मिली अल्हम्दुलिल्लाह, उन बरकतों का यानी फैज़ान जो ज़ाहिरी तौर पर हम देखते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर रहे हैं। तो जो तलबा हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के तलबा हों या दीनी इदारों के तलबा हों, जब इस एज में वो दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे, दर्स देंगे, दर्स सुनेंगे, इस्लामी भाइयों के मदरसतुल मदीना में पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला रहेगा, जब इलाकाई दौरा बराए नेकी की दावत में शिरकत होगी, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत होगी, मदनी काफिलों में सफ़र होगा, इस्लाह आमाल का सिलसिला रहेगा, नेक आमाल पर अमल का सिलसिला रहेगा, रोज़ाना नेक आमाल का जायज़ा लेते रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होगी, हफ्तावार रिसाला जो अमीर अहले सुन्नत जिसका ऐलान फरमाते हैं ये पढ़ेंगे या सुनेंगे और दूसरों को इसके इससे दर्स देने का सिलसिला होगा। तो अल्लाह ने चाहा बहुत सारी बरकत जो इन दीनी कामों की हैं वो मिलने के साथ साथ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अब इसमें जब मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो आप उसको रेलिवेंट जो है एक्टिविटी ऐसी जो आपकी तालीम के लिए मुआविन हो, आपके सब्जेक्ट जिसमें आप तालीम हासिल कर रहे हैं उसके लिए मुआविन हो, वो अगर वाकई करना पड़े कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको अवेल किया जा सकता है, लेकिन इससे हट कर आप जो है वो ऐसी एक्टिविटी ना शुरू करें कि आपकी तालीम मुतासर हो जाए। तो ये तो खैर इससे हट के है कि हमें दीनी काम जो है ना वो करते रहना है दावत इस्लामी का। इंशाअल्लाह इसमें ऐसा ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसी खुद एतमादी होगी कि इंशाअल्लाह ज़माना तालिब इल्मी में भी और अल्लाह ने चाहा तो इसके बाद जब आप फारिग होंगे तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इंशाअल्लाह आपको हर जगह काम आएगा। एक और जो अहम बात है वो ये है कि जो आप असबाक पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस क्लास रूम में आप जाएं तो वहाँ बस आप सिर्फ पढ़ें, बाद में उसको बिल्कुल उसको देखें भी नहीं, तो असबाक की तकरार बहुत ज़रूरी होती है, उसको याद करना, होमवर्क वगैरह इसीलिए दिया जाता है, तो असबाक की तकरार ये बहुत ज़रूरी है। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अच्छे अंदाज से ज़हन नशीन होगा। फिर जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो आपको पढ़ाने वाला है आपका उस्ताद, उसका अदब बहुत ज़रूरी है, उस्ताद का अदब करेंगे तो इंशाअल्लाह अदब की बरकत से आपको वो मिलेगा जो शायद वैसे आप कोशिश करके हासिल नहीं कर पा रहे। फिर दीनी जो तालिब इल्म हैं बिलखुसूस वो भी, इसी तरह दुनियावी इदारों में जो दीनी किताबें हैं, वैसे तो हर किताब का अदब होना होता है और करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस दीनी किताबों का बहुत ज़्यादा अदब करने की हाजत है। जितना ज़्यादा अदब दीनी किताबों का होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उतनी ज़्यादा बरकतें मिलेंगी, हुसूल इल्मे दीन में इंशाअल्लाह अज़ीम शान कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके अलावा जो तालीमी इदारे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी है, तो ये इल्म सिखाने का एक ज़रिया है, और बिलखुसूस दीनी तालीम के इदारे जामियात हैं, मदारिस हैं, तो इन इदारों का भी अदब है। अगर हम अपने उस्ताद का अदब करेंगे, अगर हम अपने इदारों का अदब करेंगे, दीनी किताबों का अदब करेंगे, दीगर किताबों का अदब करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से ये जो अदब है इस अदब की बरकत से भी हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो बहैसियत एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट की हैसियत से मेरी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज इस पर कुछ हमने बातचीत की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी जिम्मेदारियों को पहचान कर अदा करने की तौफीक बख्शे। मज़ीद अगर आप एक तालिब इल्म के लिए क्या यानी गाइडलाइंस हैं ये सीखना चाहते हैं, कामयाब तालिब इल्म कैसे बना जा सकता है, तो दावत इस्लामी के जो पब्लिशिंग का इदारा है मकतबतुल मदीना, उसकी किताबें हैं एक तालिब इल्म की कामयाबी के लिए, कामयाब तालिब इल्म कौन, ये किताब है। एक और बहुत प्यारी किताब है राह इल्म, ये अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने शाया की हैं, पब्लिश की हैं। ये किताबें आप हासिल कर सकते हैं मकतबतुल मदीना से। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं, यहाँ से आप फ्री में ये डाउनलोड कर सकते हैं। इनका मुताला कीजिए और मज़ीद बरकतें हासिल कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह मदनी चैनल देखते रहने की बरकत से भी वो इल्म हासिल होगा जो शायद हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सीख पा रहे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।
प्लीज।